जो हम सबका पिता पालनहार है, उसे कब, कहां और कैसे कौन सी सेवा करानी है, यह कला केवल शिव बाबा के पास है। बाबा भी जौहरी के रूप में अपने हर रतन की शुद्धता और क्षमताओं को जानता है। इसी श्रृंखला में बाबा ने क्षमताओं की धनी सरस्वती रूपा, प्रतिभा संपन्न, अंगत समान, अचल अडोल, शुक्ल पक्ष की शीतलता भरी चांदनी के लिए आदरणीय शुक्ला दीदी को यज्ञ सेवा के लिए निर्धारित किया। हम आदरणीय दीदी जी का सहृदय स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी जी का जन्म पंजाब के उस शहर में हुआ जहां प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास संरक्षित है, जिसे हम अमृतसर के नाम से जानते हैं। बाल्यकाल से ही आपको भगवान की पारखी दृष्टि आप पर थी। बाबा को रोम रोम में समाकर आप सन 1960 से स्वर्णिम संसार को इस धरा पर लाने के लिए सतत सेवा कर रही हैं। अपने अर्धशतकीय समर्पित ईश्वरीय जीवन में आपने 60 से अधिक सेवा केंद्र व उप सेवा केंद्रों द्वारा सेवा की वृद्धि करके अपनी क्षमता का परिचय दिया और बाबा को दिया अपना वादा पूरा करके अनवरत आगे बढ़ने रहने की अपनी दृढ़ता। यज्ञ के समक्ष प्रस्तुत की आपकी इस उपलब्धि को देख कह सकते हैं, जब नैनों में नूर हो भगवान का, जब नैनों में नूर हो भगवान का, हाथों में हाथ हो भगवान का, शक्ति चोली आपने भगवान से, सफलता बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। वर्तमान में आप हरिनगर एवं संबंधित सेवा केंद्रों एवं मिनी मधुबन ORC की डायरेक्टर हैं, साथ ही सिक्योरिटी विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। ऐसी तपस्वी मूर्त दीदी जी से आज हम अमृतवाणी सुनेंगे, जिसका विषय है वायुमंडल में योग का सकाश फैलाने का समय, अमृत वेला।
ओम शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परिवर्तन की शुभ वेला में आज के विषय का हम सबके जीवन के साथ तथा संसार की प्रत्येक आत्मा का संबंध है। इस सृष्टि रूपी काल चक्र में प्रकृति और पुरुष को सत्व प्रदान, समृद्ध, सशक्त बनाने में अमृत वेले का बहुत बड़ा महत्व है। यूं तो आप देखेंगे संगम युग है ही अमृतमय युग, जिसका हर पाल अमृत वेला है। क्यों? क्योंकि परम शक्ति परमात्मा पिता ने, जिनको हम बड़े प्यार से, बड़े दिल के उद्गारों से संबोधित करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही कल्याणकारी है। तो उस कल्याणकारी पिता ने संगम युग पर आकर हम मनुष्य आत्माओं में आत्मबोध कराया, जीवन जीने की कला दी और अमर भव का वरदान दिया। उसके साथ साथ ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर उस प्यारे पिता ने हम बच्चों को हमारी भी पहचान, अपने स्वयंभू स्वरूप की भी पहचान और समय की भी पहचान कराकर जीवन जीने की कला सिखाई है। तो ये अमृत वेला सर्वश्रेष्ठ वेला है और सारे दिन की दिनचर्या का फाउंडेशन पीरियड है। कहते हैं आज अच्छी है तो मध्य भी अच्छा है, अंत भी अच्छा है। आज अच्छी नहीं तो ना मध्य अच्छा होगा ना अंत अच्छा होगा। तो अमृत वेले में हम सब बच्चों को बाबा सदा जागती ज्योत बनकर के समस्त विश्व को शक्तिशाली किरणें प्रदान करने के लिए हमेशा आदेश और संदेश देते ही रहते हैं। और अमृत वेला जो है हम बच्चों को एक शक्तिशाली बनाने के लिए और फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन अगर अच्छा है तो योगी जीवन का मकान भी अच्छा होगा। हम सब की सदा ही ये शुभ इच्छा रहती है कि हमारा जीवन एक राज ऋषि की तरह, एक योगी की तरह, एक देवता के सदृश बन जाए। और उसके लिए अगर हमने अमृत वेले से लेकर अपनी स्मृतियों को ऊंच नहीं बनाया होगा तो हमारी मनोस्थिति साधारण रहेगी, हमारे कर्म भी साधारण रहेंगे, हमारे संकल्प भी साधारण रहेंगे, हमारा दृष्टिकोण भी साधारण ही रहेगा और सोच भी साधारण ही रहेगी। हम कई बार सोचते हैं कि हम बहुत प्रयास करते हैं फिर भी हमारी जो सोच और दृष्टिकोण है वो बदलता नहीं है। उसका मूल कारण अगर गहराई से सोचे तो अमृत वेला जो हमारा पावरफुल होना चाहिए वो नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो भक्ति मार्ग में भी अमृत वेले का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। संसार के अंदर कोई भी किसी के ऊपर विशेष परिस्थिति आती है या कोई भी विशेष ऐसी घटना आती है तो उनको यही कहा जाता है तुम अमृत वेले उठकर भगवान को याद कर और भगवान तेरे को तेरी कामना को पूर्ण करेगा। और आप देखेंगे वहां पर भी अमृत वेले का महत्व है और अपने जीवन काल को श्रेष्ठ और महान जीवन बनाने के लिए, दुनिया के आगे एक दर्शनीय मुहूर्त बनने के लिए अमृत वेला का विशेष महत्व है। आप देखेंगे दुनिया में भी ये बात कही जाती है कि उठ जाग मुसाफिर बोर भाई, अब रैन कहां तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो अगर हम चाहते हैं हम सर्व प्राप्तियों से भरपूर बन जाएं, उस परम शक्ति परमात्मा से सर्व वरदानों से सर्व शक्तियों से अपनी बुद्धि रूपी झोली को भर ले, अपने आप को संपन्न बना ले, तो अगर हमारी ये उत्कंठा रहती है तो उसके लिए हमें अमृत वेले के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। और ये अमृत वेला के अंदर हमें एक ऑर्डिनरी रीति से, हम जैसे बैठते हैं ऐसे नहीं, मुझे मेरे नेत्रों ने देखा हुआ है अच्छी प्रकार से ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा सवेरे 3:30 बजे उठकर, जो बहनों ने ब्रह्मा बाबा को देखा होगा और लास्ट दिनों को देखा होगा तो उन्होंने ये अनुभव किया होगा कि बाबा पांडव भवन के आंगन में जहां निर्वैर भाई जी का कमरा है उसके ऊपर एक तल्ला है और उस तल्ले पर खड़े होकर एक लाइट हाउस बनकर ऐसे समस्त विश्व की आत्माओं को सर्च लाइट दिया करते। वो दृश्य इतना सुंदर, इतना मोह एकदम आकर्षित करने वाला और जीवन को परिवर्तन करने वाला होता। तो आज समाज को, विश्व को इस बात की जरूरत है कि हम बच्चे वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए, सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए, अपने बाप के संकल्पों को साकार करने के लिए क्या करें, अमृत वेले को पावरफुल बनाए, जागती ज्योत बन करके बैठे, आंखें खोल करके बैठे, ना कि आंखें बंद करके बैठे। आप देखिए भक्ति में प्रभु की एक बूंद की याचना करते हैं, प्रभु तेरे एक बूंद के हम प्यासे हैं, तू हमें क्षणिक दर्शन करा दे। परंतु आज हम सब कितनी सौभाग्यशाली और पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं, स्वयं भगवान हमें अमृत वेले का महत्व दिलाकर ज्ञान का युग का तीसरा और आत्मिक समृद्धियों की समृद्धि दिलाकर चैतन्य अवस्था में स्थित होने के लिए जागृत करते रहते हैं। और साथ साथ सिर्फ जागृत नहीं करता, वो भाग्य विधाता हमें अपनी स्नेहमयी दृष्टि से, वरदानों से हमारी झोली को भरता है, हमारे को नजर से निहाल करता है, हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करने की शक्ति प्रदान करता है और उसके लिए समान भाव का वरदान देता है। हे बच्चे, जैसे मैं हूं वैसे तुम बनो। भक्ति में आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति कोई विशेष कार्य जब शुरू करता है तो अपनी भ्रकुटी के ऊपर तिलक लगाता है और परमात्मा पिता हम ब्राह्मण बच्चों को किस बात का तिलक लगाता है, विजयी भव का तिलक लगाता है, सफलता मूर्त भव का तिलक लगाता है। परंतु वो तिलक सदा हमें लगा रहे, हम हर कदम में हर क्षेत्र में विजयी बने रहे, वो तभी हो सकता है जब हम हमारी अपनी दिनचर्या के स्टार्टिंग पीरियड को हमने अच्छी प्रकार से स्टार्ट किया होगा, अर्थात अमृत वेले को अच्छी तरह से मनाया होगा और अच्छी तरह से अपने आप को जागती ज्योत बनकर आंखें खोल करके स्थित किया होगा। आप देखेंगे कई भाई बहन, कभी कभी मैं पूछती हूँ क्लास के अंदर कि आप अमृत वेला करते हैं? हाँ दीदी, अमृत वेला करते हैं। अरे भाई, कहाँ बैठ के करते हो? वो क्या बोलते हैं उस समय बड़ा अजीबो करीब लगता है, कहते हैं अमृत वेला हम बिस्तर पर बैठ के करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस बिस्तर ने आपको सारी रात आराम दिया और उसी बिस्तर पर बैठ करके आप अमृत वेला करते हैं, तो क्या दुनिया को आप सकाश दे सकेंगे? क्या दुनिया को आप एक शक्ति प्रदान कर सकेंगे? क्या दुनिया के दुखों का निवारण कर सकेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। अमृत वेला करने के लिए मुझे दीदी मनमोनी की याद आती है, वो हमेशा, वो एक बार फॉरेन कंट्रीज में होकर के आई थी, तो वहां उन्होंने देखा कि वहां अमृत वेले का बड़ा महत्व है और उनके पास छोटे छोटे घर होते हैं तो भी वो कैसे बाबा का स्थान जरूर बनाते हैं। तो दीदी मनमोनी कहा करती थी कि अमृत वेले को पावरफुल बनाने के लिए बाबा के घर में बाबा का कमरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक विशेष आसन पर बैठकर, एक विशेष टाइम पर बैठकर के जो हम योग युक्त हो सकते हैं, अपने आप में इतने शक्तिशाली स्मृतियों में समृद्ध हो सकते हैं और समस्त विश्व को साकाश दे सकते हैं, वो हम एक साधारण रीति से भिन्न भिन्न आसनों को बदलते सदलते कहें कि हमारा अमृत वेला पावरफुल हो गया और हम दुनिया को साकाश दे रहे हैं, वातावरण को शुद्धिकरण कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वातावरण को अगर हमें शुद्धिकरण करना है तो पहले हमें अपने मन वचन कर्म संस्कारों को अच्छी प्रकार से शुद्ध करना होगा। اس کے لیے ایک چاترک کی طرح، جیسے چاترک سدا اس ایک بوند کے لیے آنکھیں بچھائے بیٹھا رہتا ہے، ایسے ہم ایک چاترک کی طرح بیٹھ کر اس پربھو کو، اس بولے بھنڈاری کو، اس سروردانوں اور سروشکتیوں کے داتا وداتا کو، جس کے پاس ہمارا جنم سدھ ادھیکار ہے، ادھیکار لینے کے لیے، شکتی سمپن بننے کے لیے، ایک چاتر کی طرح سچے سنے کی اگین کو چلا کے رکھنا ہوگا، کیونکہ سچا سنے کے آگے نہ کوئی بھکتی ہے، نہ کوئی شکتی ہے، نہ کوئی یاترا ہے۔ جہاں سچا سنے کے انکش اپنے اندر پیدا ہو گئے، وہی جیون کو اپنے آپ میں پریورتن کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے بیتے ہوئے کال کو، شروعات کے کال کو دیکھیں، تو جب ہمیں اس بات کا مہتو معلوم پڑا تو ایک جاگتی جوت بن کر کے ساری رات کیسے یوگ لگاتے، کیسے اس ایشوریہ پتا کے سرف سمندوں کی انبوتی کرتے۔ آج پران باپ دادا جب بولتے ہیں کہ بچوں تمہیں سرف سمندوں کا انبھو ہے، تو جب ہم بھائی بہنوں سے پوچھتے ہیں کوئی کیسا جواب، کوئی کیسا جواب دیتا ہے، تو وہ سرف سمندوں کی انبوتی کب ہوگی؟ جب ہم اس دے اور دے کے بھان سے اوپر اٹھ کر ایک جاگتی جوت ہو کر کے بیٹھیں گے۔ امرت ویلا کو پاورفل بنانے کے لیے بابا نے ہم بچوں کو طرح طرح کے ورتان، طرح طرح کے ٹائٹلز دیے ہیں، اور اگر ہم ایک ہی میں آتما ہوں، میں آتما ہوں، میں آتما ہوں، یہی سنکلپوں کو رٹ رہیں گے، تو وہ شکتی ہمارے اندر، وہ پریورتن ہمارے اندر، وہ دیویتا ہمارے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ تو اگر ہم دیویا مانو بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جاگتی جوت بن کر کے اپنے امرت ویلے سے اپنی دنچریا کو آرمبھ کرنا ہوگا، اور سرشتی روپی گلوب کے اوپر بیٹھ کر اس پرم شکتی پرماتما سے شکتی کی کرنیں لے کر کے سمست وشو کی آتماؤں کو کرنوں کے دوارا پرواہت کرنا ہوگا۔ ان کو لگے کہ کوئی مہان یوگی اور مہان تپسوی ایک ستھان پر بیٹھ کر کے ہمارے کو یوگ کی کرنیں ساکاش دے رہے ہیں۔ ہمیں برہما بابا کی یاد آتی، کئی بار بابا کہتے کہ میرے وقت میری بچیاں مجھے بہت یاد کر رہی ہے، اور اس کی یاد میرے پاس ایسے پہنچ رہی ہے، اور میں اس کے انکول ان کو یہاں سے ہی بیٹھ کر کے شکتیوں کا پرواہ بھیجتا ہوں، تاکہ ان کو ایسی شکتی آ جائے، ان کا اتنا ول پاور اسٹرانگ ہو جائے، جو وہ کرنا چاہتی ہے وہ کر سکے۔ تو آج سماج کو اس بات کی ضرورت ہے، پرنتو وہ ضرورت کون پوری کرے گا؟ جو اپنے امرت ویلے کو پاور فل بنائے گا، امرت ویلے کو پنیہ پردائک بھی کہا جاتا ہے، پنیہ کو پردان کرنے والا۔ اب وہ پنیہ پردان کرنے والا کیسے ہے؟ کیونکہ اس سمے کو اگر ہم نے پراپر وے میں یوز کیا، پراپر وے میں اس کا استعمال کیا، اپنے آپ کو پراپر وے میں جاگتی جوت بنا کر کے اس پرماتم ملن کی گھڑیوں کا شریشٹھ انبھو کر کے انیہ آتماؤں کو انبھو کرایا، اور انیک دکھی اشانت گراہ لگے ہوئے آتماؤں کو یوگ شکتی، شدھ سنکلپوں کی شکتی کا پرواہ دے کر کے، ساکاش دے کر کے، ان کو ان بندنوں سے، ان گراہوں سے مکت کرایا ہوگا، تبھی ان آتماؤں سے ہمیں پنیہ پراپت ہوگا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے اس کو پنیہ پردائک کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بھگوان کی سمرتیوں میں سمرت ہو کر کے ہم اپنے دن چرا کا آرمبھ کرتے ہیں، اور اپنے جیون کو श्रेष्ठ कर्मों को सशक्त बनाने के लिए हमें प्रेरणाएं भी मिलती हैं और शक्ति भी प्राप्त होती है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। तो जागो का मतलब कि ऐसे नहीं है जैसे कि जागे और फिर सो गए, जागे और फिर सो गए, या बैठे बैठे भगवान कहता है आओ आओ आओ, और हम कहते हैं भगवान को आप नीचे आओ आओ आओ। कैसे? क्योंकि जब हम योग में निंद्रा करते रहेंगे तो क्या मतलब है, वो कहता है ऊपर आओ और हम कहते हैं नीचे आओ नीचे आओ। तो क्या होगा जब हम उनको नीचे बुला रहे हैं और वो कहता है ऊपर आओ, क्योंकि तुम्हारा अमृत वेला चरती कला का समय है, सिद्धि स्वरूप बनने का समय है, संकल्पों में सिद्धि लाने का समय है। तो जो संकल्पों में सिद्धि लाने का समय है और उसको हम टाइम पास कर रहे हैं या निंद्रा देवी की सुंदर गोद में बैठ करके अमृत वेले को मना रहे हैं, तो हमने कैसे अपने आप को सशक्त बनाया, कैसे वरदानों से अपनी झोली को भरा, कैसे अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बनाने की शक्ति अपने अंदर भी लाई और अपनी मनोस्थिति को ऊंचा बना करके दूसरों को भी वो शक्ति प्रवाहित की। क्योंकि आज बाबा हम बच्चों से एक ही संकल्प चाहते हैं, बच्चे अपने आप को इतने सशक्त बना लो, इतना सत्वप्रदान बना लो, इतनी तुम्हारी मनोस्थिति ऊंची हो जाए जो तुम्हें देख करके लोगों को लगे कि ये किसके है। जब सवेरे भी दादी बोल रही थी, मैं कौन, मैं किसकी, मैं किस लिए, ये तीन शब्द भी अगर हमारी समृद्धियों के अंदर विशेष रूप में आ जाए तो हमारा अमृत वेला बहुत पावरफुल हो सकता है। और उसके साथ साथ मुझे अपने उस प्राण प्रिय बाप दादा के वो सुंदर शब्द याद आते हैं कि ये बच्चे तुम विश्व को परिवर्तन करने के लिए ऊपर से उतरी हुई आत्मा हो, ऊपर से उतरी हुई आत्मा हो, तुम अवतार हो, अवतरित हुई हुई आत्मा हो। अब बताइए जब हम बाबा हमें इतनी ऊंची स्मृति दिलाता है दुनिया को सकाश देने के लिए, दुनिया को सशक्त बनाने के लिए, हमारी इतनी ऊंची ऊंची स्मृति हमारे अंदर जागृत करता है, तो हम उसको अपने मन से कितना स्वीकार करके उसको अपने जीवन के अंदर कितना उसका प्रयोग करते हैं। अमृत वेला योग का प्रयोग करने का समय है। योग को प्रयोग हम अमृत वेले में अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे प्रयोगशाला में साइंस वाले प्रयोग करते रहते हैं और फिर उससे कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई आविष्कार करते हैं, इसी प्रकार हम अमृत वेले के योग को पावरफुल बनाकर योग द्वारा अनेक प्रकार के प्रयोग, जो प्राण बाप दादा कहते तुम एक स्थान पर बैठकर लंदन में भी आत्मा की बुद्धि को चेंज कर सकते हो, पर वो कैसे चेंज होगी, जब हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, हमारी बुद्धि शक्तिशाली हो जाएगी। मन एकाग्र होगा, बुद्धि शक्तिशाली होगी, तो माया का कोई वार हमारे ऊपर नहीं होगा। हम परवश, जैसे नींद के परवश हो जाते हैं, तो परवश नहीं होंगे हम। एक सशक्त आत्मा, एक लाइट हाउस बनकर दुनिया को मार्ग प्रदर्शित करते रहेंगे। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अमृत वेला संकट मोचन का समय है। सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण करने का समय है अमृत वेला। तो इसलिए सभी को अमृत वेले को बहुत पावरफुल बनाना चाहिए। मैंने देखा कि अपने यज्ञ इतिहास में जब से लेकर इस बात के ऊपर विशेष महत्व दिया गया है, तब से लेकर ये हैदराबाद की चिंगारी समस्त विश्व में फैल गई है। उसके पीछे क्या है? त्याग है, तप है, एकाग्रता है, निश्चय है, और आत्म समृद्धियां हैं, परमात्म पिता के द्वारा प्राप्त हुई शक्तियां हैं ना, तो वो कहां से मिलेगी? वो अमृत वेले से ही प्राप्त होगी। अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने से ही हम विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने संकल्प किया कि मुझे विदेशियों को भगाना है, तो संकल्प की शक्ति को पावरफुल बनाया, दृढ़ संकल्प किया और एक निश्चय कर लिया कि मुझे अहिंसा के बल से ही परिवर्तन लाना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबको भी अपनी अमृत वेले को पावरफुल बनाकर, आत्म दीप अच्छी प्रकार से जगाकर, जाति ज्योत बनकर, संकट मोचन बनकर के संसार के अंदर एक नई लहर फैलानी है, नई जागृति लानी है, नया उमंग और उत्साह लाना है। परंतु वो तब होगा जब हमारा खुद का अमृत वेला पावरफुल होगा। एक भाई आज हमारे पास आए तो कहा, दीदी मैं जब से आया हूँ ज्ञान में, मेरा तब से लेकर के अमृत वेला मैंने 5 मिनट से स्टार्ट किया था, 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर अभी मैं 1 घंटा 1.25 घंटा लगातार बैठ सकता हूँ पावरफुल स्थिति में। तो जब ऐसे बाबा के बच्चे कर सकते हैं तो क्या नहीं, और उनके जीवन में जब मैं साक्षी होकर देखती हूँ तो वास्ट परिवर्तन आता है, उनके परिवार के अंदर भी वास्ट परिवर्तन है। तो अगर हम संसार में परिवर्तन लाना चाहते तो उसके लिए आज दृढ़ संकल्प करें कि हमने अपने आप को सशक्त बनाना है, हमने विश्व कल्याण की कल्याणमयी भावनाएं, कल्याणमयी भाव अपने अंदर सदा जागृत रखने हैं। उसके लिए हमें अपने अमृत वेले को पावरफुल बनाना होगा। इस पर मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आता है कि एक भाई अमृत वेले कहीं क्लास करने जा रहा था तो कुछ चोर डाकू उसके पीछे लग गए, उसको कहा तुम्हारे पास जो कुछ है हाँ तुम दे दो। उस बेचारे ने जो कुछ भी था, पैसा घड़ी जो कुछ भी था मोबाइल सब कुछ दे दिया। परंतु जब उस चोर का ध्यान बाबा के बैज के ऊपर पड़ा तो उस बैज को देखकर वो सोचने लगा, ये तो कोई ऐसे स्थान पर जा रहा है। तो उससे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहा मैं अमृत वेले उस परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए जा रहा हूँ। तो उसने कहा तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी चीज के ऊपर हाथ नहीं लगा सकता, सारी चीजें उसको वापस लौटा दी। तो क्या नहीं कर सकता जब अमृत वेले से जैसे हमारे अंदर मानसिक परिवर्तन आ जाएगा, संकल्पों में सिद्धि आ जाएगी, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे बाबा चाहता है वैसे बाबा के बच्चे हम बन सकते हैं। परंतु उसके लिए हम सबको अपना ध्यान, जो हम सवेरे सवेरे अलबेले तरीके से अमृत वेला मनाते हैं, वो ना मना करके अलर्ट होकर और संगठन में अमृत वेला करेंगे तो और भी ज्यादा पावरफुल स्थिति, क्योंकि एक दूसरे का योग मिलता है, सहयोग मिलता है, उस सहयोग से भी शक्तिशाली बन सकते हैं। और हम अपने आप को जो हमारा पिता वरदानों से हमारी झोलियां भर रहे हैं, हमको संपन्न बनाना चाहते हैं, हमारे को एक शांति दूत बनाकर संसार के अंदर हमारे द्वारा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो हम अपने बाबा के संकल्पों को अच्छी तरह से, संसार के वायुमंडल को अच्छी प्रकार से चेंज कर सकते हैं जब हमारा अमृत वेला पावरफुल और सशक्त होगा। अब आपको अमृत वेले को सशक्त बनाने के लिए हमारी दूसरी बहन आएगी, उसके ऊपर कमेंट्री कराएगी, तो उनके द्वारा भी आप सुनेंगे। पर एक प्रसंग मुझे याद आता है कि अमृत वेले का कितना बड़ा महत्व है, उस समय मैं आपको एक छोटी सी कहानी पर کہانی جو میں نے بچپن میں پڑھی ہے وہ یاد دلانا چاہتی ہوں, اور بابا بھی ہمیں نت اس کے اوپر ہمارا دھیان کھچواتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ایک راجہ تھا, وہ بہت پرتاپی تھے, بہت گیان اپنے طریقے کے ودوان اور شکتیشالی تھے, پر کیا ہوا کہ ان کے یہاں پر کچھ سادھو آئے, وہ بھی بہت اچھے ودوان تھے, تو انہوں نے بہت اچھا اپنا پرچار شروع کیا, لوگوں کو اس کی باتیں بہت اچھی لگی, ان کی مہما راجا تک پہنچی. تو جب راجا تک مہما پہنچی تو راجا نے بھی ان سادھوؤں کو اپنے دربار میں بلایا اور ان کو کہا آپ ہمارے یہاں پر بھوجن پان کیجئے, وشرام کیجئے. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم جیسے بابا بھی کہتا ہے کہ جب تک تمہارا امرت ویلا ٹھیک نہیں ہے تو کچھ نہیں ٹھیک ہے, تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جب تک کوئی سویرے اٹھ کر اسنان نہیں کرتا ہے, اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کا آدر نہیں کرتا ہے, اور کروت کرنے سے پہلے کچھ سوچ نہیں لیتا ہے, تب تک ہمارے سامنے جب کوئی یہ پرتیجا نہیں کرتا تب تک ہم اس کے گھر کا اس کے یہاں کا بھوجن نہیں سویکار کرتے. تو راجا تو پہلے ہی کافی ودوان اور کافی پوجا پاٹ کرتے ہی تھے, دھارمک وچار کے تھے, تو انہوں نے کہا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, میں کل سے لے کر کے آپ کی ساری باتیں ضرور ضرور اپناؤں گا. تو وہ انہوں نے ان کے یہاں بھوجن سویکار کیا, راجا نے ان کو دان دکشنا دے کر ودا کر دیا. دوسرے دن ہی راجا سویرے سویرے سوری ادے ہونے سے پہلے ایک ندی کے پار گئے سنان کرنے کے لیے. تو سنان کرنے کے بعد جب وہ واپس لوٹ کے آ رہے تھے تو ایک استری کے رونے کی آواز آئی. انہوں نے کہا میرے راجیہ میں جہاں اتنا سکھ ہے شانتی ہے وہاں ایک ناری رو رہی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس رونے کی آواز کے انکول وہ وہاں پر پہنچے اور اسے بولا ماتا تو رو کیوں رہی ہے؟ اور وہ کہنے لگی میں انہونی ہوں, میرے راجا کی کل مرتیو ہونے والی ہے. تو راجا نے کہا کیسے ہوگی ان کی مرتیو؟ تو کہا ان کی مرتیو ایک ناگ دیوتا سے ہوگی, ناگ دیوتا ان کو ڈس لے گا تو مرتیو ہو جائے گی. راجا نے کہا اچھا. تو راجا ان کی یہ بات سن کر کے گھبرائے نہیں, اپنے محل کی اور چل پڑے اور راج درباریوں کو اکٹھا کیا اور ان سب کو کہا کہ کل میری مرتیو ہونے والی ہے اور میرے یہاں پر لڑکا کمار کوئی نہیں ہے, لڑکی ہے, تو میں نہیں چاہتا دوسرے شہر کا راجا میرے راج کے اوپر راج کرے, تو میری کماری کوئی ہی راج کمار بنا کر راج تخت پر بیٹھا دینا, اور مہمان کا آدر ستکار کرنے کے لیے جگہ جگہ پیالوں میں دودھ ڈال دینا اور ساتھ میں گلاب کے پھول جگہ جگہ بچھا دینا. تو انہوں نے ایسا ہی کیا. دوسرے دن راجا سنان کرنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں, اور کھڑے ہو گئے اور آوان کر رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, ایک پربت سے ایک ناگ دیوتا آ رہا ہے اور راجا اس کو بولتا ہے آئیے ناگ دیوتا آپ اپنا کام کیجیے. تو وہ کیا کہتا ہے, مہاراج آپ نے مجھے بہت خوش کر دیا ہے, آپ نے میرا بہت آدر ستکار کیا ہے, اور میں ابھی آپ نے دودھ کے پیالے رکھے ہیں, گلاب کے پھول میرے لیے بچھائے ہوئے ہیں, تو میں یہ آپ کی مرتیو اپنے اوپر لیتا ہوں, آپ کو کچھ نہیں ہونے والا. تو راجا وہ ناگ دیوتا وہی بسم ہو گئے, ختم ہو گئے, اور راجا پھر محلوں کی طرف چل پڑے. جب محلوں کے نزدیک لوگ بہت خوشیاں منا رہے کہ راجا تو پھر جیسے راجا تھا ویسے ہی واپس لوٹ رہا ہے, تو پھر جب راجا محلوں کی طرف گئے تو انہوں نے کیا دیکھا, ان کی جو رانی ہے وہ کسی پر پرش سے بات کر رہی ہے. ان کو بڑا غصہ آیا, انہوں نے تلوار نکال لی اور کہا کہ اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, मैं तो अभी जिंदा हूँ, अभी गया नहीं हूँ, तो इसने पर पुरुष से बात करना शुरू कर दिया है ना। पर फिर वो साधु की बात उनको याद आ गई कि क्रोध नहीं करना, क्रोध करने से पहले थोड़ा सा सोच लेना, देख लेना। तो जब वो नजदीक गया तो देखा उसकी अपनी ही राजकुमारी थी, जिसको वो राजकुमार के कपड़े पहनाए जा रहे थे राजाभिषेक देने के लिए। तो कहने का भाव ये है कि बाबा हमको भी, बाबा की हम सब राज दुलारे हैं, बाबा हमें राज भाग्य देने के लिए रोज रोज कहता है अमृत वेला तुम्हारे लिए शुद्ध पवन वेला है। और दूसरा गीत जो शुरू में यज्ञ में बहुत अच्छा चलता है, जाग सजनिया जागो नवयुग आया के आया। तो उन गीतों की अच्छी तरह से गहराई में जाकर बाबा के साथ सच्चा संबंध जोड़कर अपनी मनोस्थिति को इतना ऊंचा और उज्जवल बना लो जो आने वाली परिस्थितियों का, आने वाले समय का, आने वाली समस्याओं का, आने वाले कारणों का अच्छी प्रकार से निवारण कर सको। और संसार में आज के बाद हम किसी को मिल सकते हैं नहीं मिल सकते क्या पता, तो हमेशा अपनी घड़ी को अंतिम घड़ी जानकर घर लौटने की तैयारी करो और अपने आप को क्रोध मुक्त, रोग मुक्त बनाओ। शीतलता और शांति हमारा स्वधर्म है, उसमें अपने आप को स्थित करने का सदा दृढ़ संकल्प करेंगे तो हम एक दिन ऐसे शांति दूत बनकर के विश्व के अंदर बाबा का संदेश, बाबा का आदेश अच्छी तरह से प्रसारण कर सकेंगे। ओम शांति शांति शांति।
ओम शांति। हम सभी ब्रह्मावत आज स्व परिवर्तन के द्वारा विश्व परिवर्तन का दृढ़ संकल्प लेते हुए प्यारे बाबा से मिलन मनाएंगे। इसमें कुछ एक बात हम ध्यान रखें, मन और बुद्धि को साथ साथ रखें, जहां मन जाए बुद्धि को भी उसके पीछे पीछे लेकर चलना है। दूसरी बात, बुद्धि रूपी स्क्रीन के ऊपर जो मन संकल्प कर रहा है वही सीन देखें। अगर आप बुद्धि के ऊपर स्क्रीन पर जो चित्र आ रहा है उसे नहीं देखेंगे, क्रिएट नहीं करेंगे, तो अन्य सीन आने लग जाएंगे। तीसरी बात, जो हम संकल्प आपको देंगे उन संकल्पों की जब तक अनुभूति ना कर लें तब तक आगे ना बढ़ें। तो आइए चलते हैं लाइफ के सबसे छोटे डिनोमिनेटर संकल्प के द्वारा एक सुहावनी यात्रा पर। पुराने वर्ष में सब कुछ पुराना छोड़ने का संकल्प करने के लिए और नए वर्ष में पदार्पण करने के लिए इस रूहानी यात्रा पर हम सब इकट्ठे चलते हैं। ओम शांति। मैं एक ज्योतिर्मय बिंदु सितारा भ्रकुटी के बीच में चमक रहा हूं। मेरी चमक कितनी पावरफुल है बड़े प्यार से अपनी ओरिजिनलिटी को निहारो। प्यार से मैं वास्तविक रूप में एक दिव्य सितारा भ्रकुटी के बीच जगमग जगमग कर रहा हूं। मुझ सितारे के अंदर जो भी कमियां हैं उन कमियों को मैं दृढ़ संकल्प के द्वारा इकट्ठा कर एक सुंदर से बैग के अंदर डालने का प्रयास कर रही हूं, जो कि मुझे आज अपने मीठे बाबा को, प्यारे बाप दादा को सूक्ष्म वतन में जाकर देना है। अपने अंदर की सभी कमियों को आज हम सुंदर से बैग के अंदर डालकर ही जाएंगे और उस पर दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधकर अब हम देह से डिटैच होकर ऊपर उड़ते ही जा रहे हैं। कितना हल्कापन महसूस हो रहा है। सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा मुझ आत्मा को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। आज मेरे विश्व महाराजन बनने वाले बच्चे आबू अब्बा के घर से कितनी सुंदर भेंट देने के लिए आए हैं। विजुलाइज करिए, बाबा मुझे शक्ति दे रहे हैं और सुनिए बाबा मुझे कुछ इशारा भी दे रहे हैं बाबा की सूक्ष्म इशारों को कैच करिए अब मैं आत्मा अव्यक्त स्थिति से धीरे धीरे निराकारी बीज रूप स्टेज पर आती जा रही हूं। निराकारी दुनिया में चारों ओर ज्योति बिंदु आत्माएं और मीठा बाबा मुझ आत्मा के सन्मुख विराजमान है। प्यारे बाबा से मुझे सर्व शक्तियों की किरणें अपने ऊपर आते हुए नजर आ रही हैं। और मैं आत्मा अपने को एक विश्व परिवर्तक मॉडल के रूप में शक्तिशाली आत्मा महसूस कर रही हूं। अब मैं पूरे विश्व में शक्तियों का दान करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बन चुकी हूं। मेरे मस्तक से शक्तियों की किरणें विश्व ग्लोब पर खड़ी होकर निकलती हुई प्रतीत हो रही है। इनर लाइट सुप्रीम लाइट से पूर्ण रूप से कनेक्ट हो चुकी है। अनलिमिटेड पावर्स प्यारे बाप से मुझ आत्मा के द्वारा पूरे विश्व में फैलती जा रही है। जिस भी क्षेत्र में कर्म क्षेत्र में आप रहते हैं वहां से साकाश देना शुरू करें।